बुक्स लेके आए हम अहमदाबाद से, पर यहाँ पे वे फॉरवर्ड टू टेक
जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन
जय जय
जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन
Yeah.
जय गोपा जय जय वेणु वत्सग जय विश्व भानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय अपना नासी जय आदिर नगरी जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन जय जय ओपीश्वर वृंदावन जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजरा जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजरा जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राम जय 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 वृंदावन बासी जटाज जय द्विज पत्नी जय नाग कन्याग
जय द्विज नाग कन्याग
भक्ति तेजा हारा पाइल गोविंद चर लो गोविंद प्यारा जय जय रासलीला सर्व मनोरम जय जय रासलीला सर्व मनोरम जय जय ज्वल रस सर्व रस परकिया भावे जहां ब्रजते प्रचार जन्नवा पाद पद्मा ओरिया स्मरा जन्नवा पाद पद्मा ओरिया स्मरा दास कहे नाम संकीर्ता जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन Oh, Govinda Gopinath Madana Mohan. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
I जय ओम विष्णु पाद प्रमाण स्वराज विचार श्री सुलांग रेस भक्त स्थान सरस्वती को साइकिल पाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की मतश हृदय श्रो की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत कृपा दृश्य वास को भक्त वृंद की श्रीदा कृष्ण गौ गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड विधि गोवर्धन की वृंदावन मथुर धाम की मधुपा प्रधान की गंगा माय की जमुना माय की तुलसी देवी की भक्ति देवी की समेत भक्त वृंद की हरिनाम संकीर्तन की श्री श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जन बैठक की प्रेमानंद ग्लोरियस असेंबली बोर्ड्स ग्लोरियस असेंबली बोर्ड्स ग्लोरियस असेंबली बोर्ड्स ग्लोरियस श्री गुरु एंड श्री गौरांगा
हरे कृष्णा। तो ना प्रभु जी अभी लेक्चर देंगे, तो प्लीज उन लेक्चर में आप प्लीज नोट बनाइएगा जो नोट्स आपको अच्छे लगे, क्योंकि आफ्टर दिस लेक्चर या तो हम आश्रम पहुंच के या अगले दिन हम लेक्चर्स पे क्विज रखेंगे, तो वो क्विज में लेक्चर्स में से ही क्वेश्चंस होंगे फ्रेम किए होंगे।
सुबह का लेक्चर था उसमें से भी होगा,
जो आज सुबह वैष्णव प्रभु ने जो लेक्चर लिया था उसमें से भी होगा। हमने काफ़ी क्वेश्चंस बनाए हैं कलान प्रभु ने और मैंने, तो वो क्वेश्चंस में प्लस आज के लेक्चर में, इसलिए आप पेन और नोटबुक का मैंने बोला था आप सबको, तो एंड में क्विज होगा, तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा और प्लीज़ अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखिए या साइलेंट पर रखिए, क्योंकि दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस। तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल वर्ल्ड का कुछ भी कनेक्शन आप अभी थोड़े टाइम के लिए बंद कर दीजिए। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।
ॐ अज्ञानसिमरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण।
सो अभी तक आप सबको सुबह से कैसा लगा? सबसे इम्पोर्टेंट तो फिश था आपके लिए और उसके पहले एक लेक्चर था। हाँ, सुबह अच्छा लगा कथा में, गिरिराज का कथा लाइक अच्छा लगा, और तमाम कृष्ण महाराज का
व्यास पूजा का फिस्ट भी आपको प्राप्त हुआ। सुन पा रहे ना ठीक से? यहाँ पर निरंतर ये कथा चलता रहता है, हमेशा कभी कुछ ना कुछ, हमेशा कुछ कथा होता है। तो हम सोच रहे थे कि आपने सुबह गोवर्धन के विषय में सुना था, तो हम सोचे कि अभी आपको थोड़ा सा गोवर्धन और राधा कुंड दोनों के विषय में संक्षिप्त में बताएंगे। गोवर्धन और राधा कुंड, तो गोवर्धन के विषय में सुबह आपने क्या सुना था, कौन से मुनि नमस्ते मुनि और किन के पास गए थे वो? द्रोणाचार्य। तो ये कहानी कौन से युग में बीती हुई थी? सतयुग में। ये कहानी, ये लीला जो हुआ है, ये कथा, ये सतयुग में हुआ था। सतयुग के बाद पुलस्त्य मुनि गोवर्धन को उठा करके इधर लेके आए थे, यहाँ पर उनको रखा था। यहाँ पर रखने के बाद जब वो उठाने के लिए, जैसा आपने सुबह सुना, वो आए तो गोवर्धन बोल दिया, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैंने आपको शर्त क्या रखा था? क्या शर्त रखा था?
नीचे रख दिया।
हाँ, एक बार भी नीचे अगर आपने रख दिया, एक बार भी अगर आपने रख दिया है गोवर्धन को भूमि पर, तो फिर से आप उसको उठा नहीं पाओगे, फिर से हम उठा नहीं पाओगे। गोवर्धन द्रोणाचल का सबसे छोटा बेटा है गोवर्धन। तो वो जब इधर आए थे गोवर्धन सचिव में, तो वहाँ पर उनको बाद में गोवर्धन ने पता लगाया, वो तो त्रिका बहुत योग शक्ति गोवर्धन के पास है। गो का अर्थ होता है, व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है,
कोई बात कर रहे
हैं, व्हाट,
वो ये इनसे पूछ रहा है।
तो गोवर्धन का शब्द का अर्थ होता है जो गौ वंश का वर्धन करे। गौ का शब्द और एक गौ का एक और अर्थ होता है क्या, इंद्रिया। तो गोवर्धन ने पुलस्त्य मुनि को कहा कि गोवर्धन, मैं अपनी इंद्रियों का विस्तार कर सकता हूँ, मैं चाहूँ उठने हाथ, चाहूँ उठने पैर, चाहूँ उठने हाथ, सब निकाल सकता हूँ, गोवर्धन मेरा नाम है, मैं चाहूँ तो यहाँ से उड़ कर जा सकता हूँ वापिस। लेकिन तब उन्होंने पुलस्त्य मुनि बहुत परेशान हो गए, मैं तुझे उठा के ले गया, लेकिन पुलस्त्य मुनि को कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन पुलस्त्य मुनि ने क्या कर दिया, और उनको शाप दे दिया। वह सारी भगवान की योजना थी, लेकिन ये गोवर्धन सचिव में इस तरह से पुलस्त्य मुनि का शाप लिया, लेकिन वहीं पर रुक गए गोवर्धन। त्रेता युग में रामचंद्र भगवान रावण के श्रीलंका में पहुंचने के लिए क्या बना रहे थे, सेतु बना रहे थे, ब्रिज। तो उनको बहुत सारे शिलाओं और पत्थरों की आवश्यकता थी, तो सब बंदरों को भेजा था, वानरों को, जाओ पत्थर ढूंढ के लेके आओ, अलग अलग पत्थर, सब पत्थर ढूंढ के लेके आए। तो हनुमान पत्थर ढूंढते 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 वो इधर आए वृंदावन, और देखा वाह बहुत बड़ा पर्वत, इतना विशाल कहाँ आए, बहुत बड़ा पर्वत। फिर उन्होंने सोचा अगर ये पर्वत को उठा करके रख दिया तो आधा वृत्त ऐसे ही हो जाए तो इतने सारी सीढ़ा उठाने की आवश्यकता नहीं, उसको उठा करके रख देते पर्वत को भी वहाँ पर। तो गोवर्धन के पास गए, हनुमान कितने बलशाली है ना, क्या है अतुल बल धारा ऐसा कुछ है ना, बल बलशाली, सबसे बलवान बजरंग जी, बजरंग बली शक्तिशाली, बड़े शक्तिवान है। तो वो आए और गोवर्धन को ऐसे पकड़ने का प्रयास किया, उठ नहीं रहा है, बहुत प्रयास किया उठ नहीं रहा है, फिर दूसरी बार प्रयास किया, हनुमान की दशा उठ ही नहीं रहा है, पर बिल्कुल हिला भी नहीं। तो बाद में फिर सोचा ऐसी तो क्या बात है इस पर्वत में, मुझसे नहीं है, मैं हिमालय पर वो उसको बड़े बड़े पर्वतों को उठा सकता हूँ, ये क्या चीज़ है। फिर से प्रयास किया, पूरा शक्ति लगाया, क्यों से कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो बाद में कहा ए पर्वत कौन है तू, जानते नहीं कौन मैं हनुमान। तो बाद में पर्वत कुछ जवाब नहीं दिया, जैसे आप समझ लो कि आप इधर आओगे और गोवर्धन को कुछ पूछोगे, गोवर्धन जवाब नहीं देगा, क्यों वो तो पर्वत है ना, पर्वत क्यों जवाब देगा आपको, है ना। अभी आप देख सकते हो ना, गोवर्धन देख के आया ना थोड़ी देर पहले, पर्वत है ना, वो क्यों जवाब देगा। तो हनुमान टक्रोध में आ गए, कहाँ से उठाओ इसको, इधर से उठाओ उधर से उठाओ कहाँ से उठाओ। तो आकाश में पहले थोड़ा ऊपर गए हनुमान और तो पूरा परिक्रमा लगा दे, पूरे हवाई आकाश मार्ग से पूरा परिक्रमा लगा दिया, शायद वही पहला परिक्रमा होगा गोवर्धन का। कृष्ण ने द्वापर युग में लगाया था, लेकिन हनुमान तो परिक्रमा लगा दिया, पूरा घूम लिया सारे पर्वत के आसपास, फिर वापिस आए इधर, इधर आए वो गोवर्धन के मुख के पास, वहाँ बना के अभी क्या हुआ, अब तक गोवर्धन रिप्लाई नहीं दे रहे थे, लेकिन अभी हनुमान ने एक छोटी सी सेवा कर ली। कौन सी सेवा की, परिक्रमा की गोवर्धन की, इसलिए अभी गोवर्धन थोड़े कृपालु हो गए, उनको दया हुई। तो हनुमान ने उसको आज्ञा दिया, ए गोवर्धन उठ, ये कौन है तू, पहले पूछा कौन है, गोवर्धन ने कहा मैं गोवर्धन, हाँ चल गोवर्धन। तो हनुमान ने कहा तो मैं कब से प्रयास कर रहा हूँ तुझे उठाने के लिए, तुमको उठने क्यों नहीं रहा है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब आप इफ यू फाइट इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल देन सरेंडर। हनुमान ने पहले प्रयास किया, कुछ नहीं हो पाया, इसलिए सरेंडर हो गए, प्रणाम किया, फिर प्रणाम किया और बोला कौन हो भाई तुम, गोवर्धन हो। तो बाद में हनुमान ने कहा कि मैं इतना शक्तिशाली वायुदेव का पुत्र, चाहूँ तो सारे पर्वतों को मुट्ठी में होले सारे पर्वतों को मुट्ठी में मिट्टी बना सकता हूँ, मैं चाहूँ कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी कम ही, मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, कौन हूँ मैं, वायुदेव का पुत्र हनुमान, जानते नहीं है मेरा पराक्रम क्या है, लेकिन मुझसे तुम उठ नहीं पाए, इसलिए इसका अर्थ है कि तुम कोई बहुत बड़े महान व्यक्ति हो। गोवर्धन ने कहा आप मुझे क्यों उठाना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि रामचंद्र, भगवान रामचंद्र सेतु बना रहे और उसमें शिलाओं की आवश्यकता है, तो मैंने सोचा कि तुम्हें पूरा उठा करके रख देता हूँ वहाँ पर, तो आधा काम ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो हनुमान गोवर्धन रामचंद्र तो बहुत खुश हो गए, रामचंद्र की सेवा करने को मिलेगा। वहाँ एकदम से आकाशवाणी हुई, हनुमान सेतु बंद का कार्य पूरा हो गया, वापिस आ जाओ, आक्रमण करना है, लक्ष्मण की आवाज थी, आक्रमण करना है। तो हनुमान ने कहा ओ कार्य खत्म हो गया, गोवर्धन को बोला ओके गुड बाय, आई हैव टू गो बैक, मुझे जाना है वापस। तो गोवर्धन से नहीं, हनुमान ये कैसे कर सकते हो आप, मुझे रामचंद्र की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ था, ये कैसे कर सकते हो, नहीं ऐसा मत कीजिए, मैं उनकी सेवा के बिना नहीं रह सकता। इसे उसे बहुत रोने लगे गोवर्धन, जोर जोर से रोने लगे। हनुमान देखा कि गोवर्धन रो रहा है, तो हनुमान ने कहा ओके लेट मी कॉल रामचंद्र। तो उन्हें आज के समय होता तो शायद मोबाइल फ़ोन यूज़ किया होता, लेकिन हनुमान गए वहाँ से, एक झंप लगाया सीधा गए साउथ इंडिया। साउथ इंडिया जाके उन्होंने गोवर्धन को कहा
कि मैं गुराम चंद्र को पूछ के आता हूँ तुम्हारे विषय में, क्या करने का है तुम्हारा। तो वहाँ पर जाके आए, रामचंद्र को मिल के आए, फिर वापिस इधर आए। तो वहाँ पर तो गोवर्धन रो रहा था, हाय हाय मैं रामचंद्र की सेवा नहीं कर पाया, कितना दुर्भाग्य है मेरा, देखो। हनुमान वहाँ पर वापिस आए, हनुमान ने कहा, गोवर्धन ने देखा, आप आ गए, क्या कहा रामचंद्र ने। तो रामचंद्र ने कहा, हनुमान ने कहा कि रामचंद्र कहाँ है कि तुम, रामचंद्र के सबसे महान भक्तों में से हो। मैं सोचता था कि मैं दास भक्ति में सर्वश्रेष्ठ हूँ, दास भक्ति में हनुमान श्रेष्ठ। मैं ऐसा सोचता था कि दास मेरे ऐसा कोई रामचंद्र का कोई दास नहीं होगा, लेकिन ये सब देख लिया मैंने, मैं कहा हूँ और आप कहा हूँ। रामचंद्र ने कहा कि तुमसे अच्छा दास कृष्ण का और कोई नहीं, इसलिए तुम्हारा नाम है हरिदास वर्य। हरिदास वर्य, सुबह आपने सुना था ना हरिदास वर्य, हरिदास में श्रेष्ठ, बेस्ट ऑफ सर्वेंट्स ऑफ कृष्ण। और रामचंद्र ने कहा कि वो द्वापर युग में जब प्रकट होंगे तो वो फिर से आएंगे और तुम्हारे पास तुम्हारे निकट ही लीला प्रस्तुत करेंगे, इसमें तुम चिंतित मत हो, तुम उनके सबसे प्रिय सेवक हो। तो इस तरह से गोवर्धन को सतयुग में कथा हुआ, फिर त्रेता में, फिर द्वापर में कृष्ण ने लीला किया, और कलयुग में हम अहमदाबाद के कुछ भक्त ने कैंप रख दिया। तो यहाँ पर गोवर्धन के पास तो चारों युग में हो गया ना कुछ, सतयुग में द्वापर में त्रेता, त्रेता में द्वापर और कलयुग। कलयुग में कौन आया था? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु आकर उन्होंने इस गोवर्धन का पुनः सबको प्रकाश डाला सब जगह। ये श्याम कुंड और राधा कुंड, ये दोनों ही चैतन्य महाप्रभु के पास है, हमारे समक्ष आज उपस्थित है। तो मैं अभी संक्षेप में कुछ राधा कुंड के विषय में, और उसके बाद आप लोग कल परिक्रमा करने जा रहे हो ना गोवर्धन के विषय में, तो उसके विषय में कुछ बताएंगे बस। ये श्याम कुंड और राधा कुंड के विषय में ऐसा कहा गया है, रूप गोस्वामी कहते हैं कि सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में जो सबसे उत्तम स्थली होती है वो है 84 कोश या मथुरा मंडल, सबसे उत्तम स्थान, सबसे पुण्यशाली, सबसे पवित्र स्थान मथुरा मंडल। मथुरा मंडल में वृंदावन वो सबसे उत्तम है। वृंदावन सबसे, भगवान को वृंदावन सबसे ज्यादा प्रिय है पूरे मथुरा मंडल में। और वृंदावन में भी जो सबसे ज्यादा प्रिय है वो है गिरिराज गोवर्धन। गिरिराज महाराज के जय। गिरिराज गोवर्धन उनको बड़ा प्यार है उनका, बहुत पूरा समय इधर ही रहते हैं। यदि राम कृष्ण स्पर्श चरण स्पर्श प्रमोद, यदि राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, गोवर्धन निरंतर राम कृष्ण बलराम के चरण कमल के स्पर्श का आनंद उठाते हैं, बलराम और कृष्ण दोनों का गोवर्धन। और गोवर्धन में जो सबसे प्रिय भगवान का स्थान है वो है गोवर्धन की दो आँखें, क्या है? श्याम कुंड और राधा कुंड, आई मीन राधा कुंड और श्याम कुंड। तो यहाँ ये श्याम कुंड राधा कुंड सारे गौड़ीय वैष्णव भक्तों के लिए, इससे उत्तम स्थान और संसार में कोई नहीं, इससे महान कोई तीर्थ नहीं है, इससे महान कोई भी लीला स्थली नहीं है, कुछ नहीं। ये सारे भक्तों का सबसे प्रिय स्थान है। हमारे सारे वैष्णव आचार्य इधर राधा कुंड का गुणगान गाते हैं। ये राधा कुंड जो है इसकी रचना हुई थी जब भगवान वत्ससुर का वध किया था, अरिष्टासुर। अरिष्टासुर जो थे वो बैल के रूप में आया था, कहीं समझ लो कि वहाँ कहीं पर वो दिख रहा है ना उस टाइम, वहाँ कहीं पर अरिष्टासुर इधर आया था और उसने वहाँ पर गोपियों को रेस करने का, उनको परेशान करने का प्रयास है। भगवान ने क्या किया, हरिष्टासुर को खत्म कर दिया, वध कर दिया। तो जब भक्त लोग से उन्होंने कहा कि अरे तो गलत किया, हरिष्टासुर तो गाय के रूप में आया था, बैल के रूप में, भले असुर था लेकिन बैल था, तुम्हें वध नहीं करना चाहिए था, वो अभी तुम्हें इसका पाप लगा, जाओ सारे तीर्थों में स्नान करके आओ, फिर आना हमारे पास। भगवान को भला कौन सा पाप लगता है? भगवान कहते हैं ना दत्ते कस्यचित पापम, मुझे किसी का पाप नहीं लगता, किसी सभी कार्यों के पाप से मैं मुक्त हूँ। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, भगवान को कोई कर्म लगता नहीं है ना। हमारा अलग है, हमारा कैसा है कि आप कुछ भी करोगे उसका कर्म लग जाएगा, लेकिन भगवान के कर्म है वो दिव्य होते हैं। वो असुरों को मारे तो भी उसका उद्धार होता है, असुर को रक्षा करे तो भी, मारना और रखना, मारो रखो भी मारो भी, दोनों एक है भगवान के लिए। कुछ लोग कहते हैं हिरण्य कृष्ण को मार दिया, प्रहलाद को उद्धार कर दिया, इसका अर्थ है कि भगवान पक्षपात करते हैं। नहीं, हिरण्य कृष्ण को कोई भगवान नाम भेज दिया, प्रहलाद को भी रक्षा किया। भगवान का क्रोध और कृपा दोनों एक समान है, दोनों कृपा ही है। तो हरिष्टासुर को मारा भगवान ने तो, लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं वो तो भगवान के कितने चार मुख्य रस है उसमें भगवान उनके साथ संबंध स्थापित करते हैं। कौन से वो चार रस है? दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। आप भगवान के साथ दास के रूप में सेवा कर सकते हो, हाँ, उनका सेवा जैसे हनुमान कर रहे थे दास के रूप में, फिर भगवान के साथ आप सख्य के रूप में सेवा कर सकते हो, उनके मित्र, जैसे सुना ना सुबह आपने, वो कृष्ण गई है, वो जा रहे थे बछड़ों को ढूंढने के लिए, तो सारे ग्वाल बाल बोला देखेंगे कुछ बचेगा तो रखेंगे, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा, सॉरी। तुम्ही कौन हो बड़े लोग, तुम्ही आमी सम, और तुम कहाँ से भाई बड़े हो गए, हम कृष्ण और हम तो एक समान है। तो ये सख्य भाव है, तो ये सख्य भक्ति होती है। उसके बाद होता है वात्सल्य, यशोदा माई और नंद महाराज का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो वात्सल्य प्रेम, और उससे भी उत्तम है वो है माधुर्य रस। माधुर्य रस क्या है? माधुर्य रस में भगवान को प्रेमी के रूप में स्वीकार किया जाता है, जैसे प्रेमिका होती है ना, प्रेमी और प्रेमिका, उस प्रकार का रस होता है। लेकिन हमारा भौतिक जगत का ये जो रस है, यहाँ का जो संबंध है, वो कचरा है, वो रिफ्लेक्टेड प्रतिबिंब है, ये कैन होल्ड। सो हरीश को क्या कहा मैंने?
भौतिक जगत का जो प्रेम है,
ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर है ना, ये कीचड़ होता है ना, कीचड़ वैसा है, या उसको बोल सकते हैं जैसे सोना और लोहा। भगवान का संबंध है वो सोना है, और भौतिक जगत का जो संबंध है वो लोहा है। चमड़े के बनी हुई थैली में भरा हुआ मांस इत्यादि, हड्डियाँ, मांस, इससे लोग आकर्षित होते हैं, तो ये कचरा है। और भगवान का जो संबंध है वो दिव्य स्तर पर होता है, भगवान के स्तर में कहीं पर काम नहीं है, फ्री फ्रॉम सेक्स डिजायर्स। तो ये विशेष महत्व है भगवान के प्रेम का, इसलिए भगवान का गोपियों के साथ जो प्रेम है उसमें कोई दोष नहीं, बहुत उच्च लेवल का है वो, हम नहीं समझ पाए, उच्च लेवल का है। तो भगवान को इन लोगों ने कहा, गोपियों ने, कि आपको स्नान करना पड़ेगा सारे तीर्थों में। सारे भगवान ने कहा मैं क्यों जाऊँगा सारे तीर्थों में स्नान करने के लिए, मैं तो परमेश्वर हूँ, मैं खुद अपने पाँव के खोरी में एक पाँव जमाऊँगा जमीन पर, सारे तीर्थों को बुला लूँगा। सारे तीर्थों को भगवान ने बुला रहे इधर सामने उस साइड, ये जो बिल्डिंग दिख रहा है ना उसके पीछे जो कुंड है श्याम कुंड, वहाँ पर भगवान एक पैर लगाया, सारे तीर्थ हाथ जोड़ के खड़े हो गए, सब आ गए, पुष्कर आ गया, गंगा, यमुना, बद्रीनाथ, केदारनाथ भी आ गया, बद्रीनाथ सब आ गया, सबके सब आ गए इधर हाथ जोड़कर। फिर भगवान ने कहा यहाँ पर एक कुंड का निर्माण करो, मुझे स्नान करना है। तो सब लोगों ने अपना अपना जल दिया, वो कुंड बन गया। फिर भगवान ने कहा कि अब मैं स्नान करने को तैयार हूँ, देखो गोपियों को बताया कि मैं यार गोपियों में तुम्हारा विश्वास किया, तुम तो किसी को भी उठा के लेके आओ, उसको तीर्थ बना दो। अब ये तीर्थ है कि नहीं, इसका क्या गारंटी? तुम बोल दे तीर्थों का जल है तो हम मान दे ये तीर्थों का जल है। तो फिर भगवान ने कहा अच्छा तुम्हें विश्वास नहीं है। भगवान ने कहा सब लोग अपना अपना परिचय दो। तो सब एक एक कर गए हाथ जोड़कर, बोले मैं हूँ पुष्कर तीर्थ, मेरा नाम है बद्रीनाथ, मेरा नाम है केदारनाथ। इस तरह अलग अलग लोग तीर्थ हाथ जोड़कर भगवान के सामने आए। बोले अब तो विश्वास है? बोले हाँ अब विश्वास है। फिर भगवान ने स्नान किया, भगवान ने उसमें स्नान किया। और फिर भगवान ने कहा कि अब तुम लोग भी स्नान करो इसमें, भक्तों को कहा। तो गोपियों ने कहा अरे तुम्हारा कुंड तो गंदा हो गया, अभी तुम पाप सारा पाप उसके अंदर डाल दिया, और हम बोलते हो स्नान करो उसके अंदर, जा ये संभव नहीं है, हम अपना अलग से कुंड बनाएंगे, दूसरा कुंड। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से कुछ दूरी पर है मानसी गंगा, तो मानसी गंगा से यहाँ तक का पूरा एक चेन बना दिया गोपियों का, और एक एक गड़ा पानी भर भर के इधर लेके आते थे। और ये यहाँ पर इस राधा कुंड के बीच में ये आपको जो दिख रहा है ना बिल्डिंग, उसके इस लाइन में ये जानवर बैठे जहाँ खत्म होता है उसके सामने आगे बीचों बीच पानी के बीचों बीच इधर कंचन कुंड है, नीचे बिल्कुल बीच में इधर आगे सेंटर से थोड़ा इस साइड राइट साइड वो है कंचन कुंड, दैट इज द प्लेस। उसको कंचन कुंड बोलते, कुछ लोग कंगन कुंड बोलते हैं। कंगन कुंड में सो कंगन से बनाया था गोपियों ने अपने, छोटा सा कुंड है नीचे पानी के अंदर, वो पहले वो बना था उसके बाद फिर ये बना, पहले वो बना था। तो ये कुंड बाद में बनाया, और फिर भगवान ने गोपियों ने भगवान ने इशारा किया सब तीर्थों को, तुम लोग जाओ, तुम्हारी अगर तुम्हें अगर कृपा चाहिए तो राधापुर में तुम्हारा प्रवेश आवश्यक है। तो सब लोग ने राधा रानी का स्तुति किया, कृपा कीजिए हमें ले लीजिए अपने चरणों में, आप हमें आश्रय नहीं दे रहे हैं, हम पर कृपा नहीं कर रहे तो हमारा उद्धार कैसे होगा। राधा रानी तो बड़े कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं कि उनके पास कोई भी जाता है थोड़ा सा उनको सेवा करेगा, कृष्ण की सेवा करेगा, राधा रानी प्रसन्न हो जाते हैं। राधा रानी ने बोलते ठीक है। फिर श्याम कुंड का जो जल है वहाँ पर जो संगम है ना बीच में, वहाँ से वो संगम का पानी श्याम कुंड से फिर राधा कुंड में आया, और फिर ये दोनों कुंड का निर्माण हुआ। तो ये कुछ संक्षिप्त में ये कथा है श्याम कुंड और राधा कुंड का। लेकिन भगवान ने ये घोषणा किया कि जितने राधा रानी भगवान को प्रिय है उतना राधा का जो कुंड है वो भी उतना प्रिय है। ये जो जल आप देख रहे हो राधा कुंड का, ये जल में और राधा रानी में कोई अंतर नहीं, स्वयं राधा रानी। आपको प्रेम चाहिए ना, हम सबको भगवान का प्रेम चाहिए, कृष्ण का प्रेम चाहिए, ये प्रेम इनके पास से मिलेगा। हमने कथा में सुना था कि जब राधा रानी कुंड के रूप में ट्रांसफर होते हैं, राधा कुंड के रूप में ट्रांसफर, तो उनका कृपा और बढ़ जाता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है। ऐसे तो आप राधा रानी को विग्रह के रूप में देख सकते हो लेकिन आप छू नहीं सकते है ना, क्योंकि शुद्ध नहीं है। लेकिन राधा कुंड इतना दयालु है कि आप पानी लेकर अपने सिर पर डाल सकते हो, इतना कृपा है राधा का, जैसे पानी सिर पर डालोगे आप हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो ये राधा कुंड और श्याम कुंड जो है गौड़ीय वैष्णव का बहुत प्रिय है। यहाँ पर बहुत सारे लीला स्थली है, पूरा पूरा लीला स्थली से भरा हुआ है। यहाँ पर ये देख रहे हो रघुनाथ दास गोस्वामी भजन भजन कुटी बोले समाधि, उसके आगे तीन गोस्वामी का समाधि है, पंच पांडव वृक्ष था इधर सूखा हुआ, फिर जीवा मंदिर है राधा गोवर्धन जी का जीवा है इधर आगे सारे पूरा चारों ओर लीला स्थली पासाघाट आगे फिर ललिता कुंड है सब पूरा भरा हुआ है लीला स्थलियों से भरा हुआ है चारों ओर बहुत सारे लीला हुए। ये कुंड जो है वो रघुनाथ दास गोस्वामी ने बनवाया था। एक याद एक बिजनेसमैन बद्रीनाथ जा रहा था लेकिन बद्रीनाथ में वहाँ पर उत्तराखंड में कुछ वर्षा हो गई होगी लेकिन वो बद्रीनाथ नहीं बद्रीनाथ गए, उनकी बड़ी इच्छा थी सेवा करने की वो बिजनेसमैन, लेकिन वो बहुत पैसा था उनके पास। जब वो दिल्ली में थे तो उनको स्वप्न आया था, बहुत पहले की बात है 500-600 साल पहले, तो उनको भगवान बद्री विशाल स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि तुम चाहते हो कि मेरी सेवा करो तो तुम जाओ यहाँ से वृंदावन, वृंदावन में रघुनाथ दास करके मेरा भक्त है राधा कुंड श्याम कुंड के पास, वहाँ पर जाओ और वो चाहता है कि इस कुंड का घाट बनवाए। यहाँ पर वो जो घाट दिख रहा है ना आपको, ये घाट बनवाए, ये घाट बनवाए ताकि कलयुग में अगर कोई वो अहमदाबाद से कोई भक्त है तो यहाँ बैठकर कुछ कथा कर सके। तो बद्री विशाल ने उनको कहा कि अब जाओ, तो जब वो गए वापस यहाँ आए, यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी को आके कहा कि हम सपना ऐसा आया था और हम आपको कुछ धन देना चाहते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी तो सोचे कोई माया तो नहीं है ऐसा होता है कई बार कोई अलग अलग रूप लेके माया आ जाती है, तो लोग बड़े ये भक्त बड़े सावध रहते हैं, जो वैष्णव होते हैं ना बड़े सावध रहते हैं कि अच्छे रूप में भी माया है तो भी उसको उसको स्वीकार नहीं करते है ना, माया का कोई भरोसा है थोड़ी, तो किसी भी रूप में आ सकती है ना, तो ये संभाल दे। पहले तो बोला नहीं 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 मुझे कुछ नहीं करना है, फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि नहीं सही में ऐसा सपना आया था और मैं चाहता हूँ कि, फिर रघुनाथ दास को समय थोड़ा विश्वास हुआ कि ठीक है, तो उन्होंने श्याम कुंड और राधा कुंड को बड़ा करवाया। लेकिन जैसे ही श्याम कुंड को जब वो तोड़ रहे थे तो वहाँ पर आगे सामने यहाँ से नहीं दिख रहा है लेकिन एक शेप है टूटा हुआ ऐसे क्रॉस, तो वहाँ पर भगवान की जीवा थी गोवर्धन की जीवा, तो जैसे उन्होंने वहाँ पर हथियार डाला तो वहाँ से खून आने लगा जमीन में से, तो गए रघुनाथ दास के पास यहाँ से खून आ रहा है, तो रघुनाथ दास गए वहाँ पर देखा तो भगवान का जीवा था, तो पत्थर पूरा निकलवा दिया, निकल करके इधर रख दिया सामने यहाँ पर पीछे ये जो बिल्डिंग दिख रहा है ना उस बिल्डिंग के पीछे, तो पत्थर है बहुत बड़ा जो जीवा मंदिर है राधा गोवर्धन जी का जीवा है, तो उसका शेप नहीं बनाया फिर क्योंकि वो शेप बन सके ऐसा था नहीं, ये श्याम कुंड का यही इच्छा था, तो उसका शेप ऐसे ही रहेगा ऐसा वो खुरी जैसा रिश्ता सूखा खुरी है ना वैसा उसका शेप है श्याम कुंड का, और इसका कोई एकदम सिंपल राधा कुंड तुरंत बन गया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने ये श्याम कुंड और राधा कुंड का निर्माण करवाया, यहाँ पर बहुत सारी लीलाएँ होती थी। एक बार सनातन गोस्वामी वो जो आप देख रहे हो ना ब्लू कलर का छोटा सा वो बिल्डिंग जो संगम के ऊपर है छोटा सा जगह है, वहाँ पर सनातन गोस्वामी बैठे थे ऊपर उस साइड, और नीचे अंदर पानी में रघुनाथ दास गोस्वामी स्नान कर रहे थे, रघुनाथ या रूप गोस्वामी पानी में स्नान कर रहे थे। तो वहाँ से सॉरी सनातन गोस्वामी बात है सनातन गोस्वामी स्नान कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ बालिकाएँ कुछ बालिकाएँ देखी, और बालिका के सिर बालिका के सिर पर सिर के पीछे उन्होंने सनातन गोस्वामी सांप देख लिया, सांप 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 ऐसे सारी बालिकाएँ हंसने लगी हाँ हाँ हाँ, बोले लेकिन सनातन गोस्वामी का ऐसा क्यों हंस रहे, मैं क्या बताया जो उल्टा उसको रक्षा कर रहा हूँ तो सारे असरे। लेकिन फिर देखा तो वो बालिकाएं के बाल थे, लेकिन एक्चुअली वो बालिका नहीं थे, कौन थे वो राधा रानी और उनकी सखियाँ थी। और सनातन गोस्वामी को ये विश्वास देना चाहते थे कि ये राधा कुंड और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। ऐसे कई लीला स्थली है इधर रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में भी, सारी कथा एक साथ हम नहीं बता पाएंगे अभी, एक साथ बहुत सारी लीला इधर है। यहाँ से आप जो देख रहे हैं यहाँ जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पर, वहाँ से एक छोटा सा ब्रिज जाता है राधा कुंड के बीच के अंदर, राधा कुंड के अंदर बीचों बीच छोटा सा एक ब्रिज है। वो ब्रिज भगवान के लिए, उसका और कोई उपयोग नहीं करता है, केवल भगवान के लिए है वो ब्रिज, क्रिस्टल ब्रिज है इधर से और बीचों बीच जाता है। और यहाँ पर अनंग मंजरी का कुंज है, दिस इज द कुंज ऑफ अनंग मंजरी। ऐसे हर एक गोपियों का, अष्ट गोपियों का कुंज है राधा कुंड के घूमते हुए, आठ गोपियों का कुंज है और उस साइड आठ गोपाओं के कुंज है सुरांग में। और यहाँ पर और यह अनंग मंजरी का कुंज है जहाँ पर हम बैठे हैं। यहाँ पर भगवान की लीला रात को होती है, रात को 12 बजे के बाद दिस प्लेस। और दोपहर को राधा कुंड में राधा भगवान राधा और कृष्ण दोनों मिलते हैं इधर, दोपहर को 3 बजे मीट किया, रात को 12 बजे के बाद वहाँ पर जल क्रीड़ा होती है दिस प्लेस। सुबह ये है श्याम कुंड राधा कुंड का संक्षिप्त में महिमा। और गोवर्धन के विषय में मैंने आपको बताया, अभी आप सब भक्त कल गोवर्धन परिक्रमा करोगे तो कल गोवर्धन परिक्रमा के विषय में, गोवर्धन के विषय में जैसे आपको बताया वो हरिदास में सबसे श्रेष्ठ है। उनके अपने हाथ आँख सब है, अगर आपका दिव्य दृष्टि होगा तो आप देख भी सकोगे, उनका स्वरूप है गोवर्धन का, अपना एक स्वरूप है। ऐसे तो पूरा गोवर्धन एक पिकॉक जैसा स्वरूप है ना, पिकॉक का शेप है। मुखारविंद मंदिर है मानसी गंगा के पास, जहाँ उनका मुख है, उनका जीवा है, यहाँ पत्थर है उनका जीवा। फिर पुंछरी पीछे है, पुंछरी का लोटा पीछे है जहाँ खत्म होता है, वहाँ पर पुंछरी का लोटा उनका पुंछरी है। फिर कुसुम सरोवर से थोड़ा आगे उनका कान है, गोवर्धन के कान। इस तरह से पूरा पिकॉक का, पिकॉक मोर का स्वरूप है गोवर्धन का पूरा स्वरूप। तो ये गोवर्धन जो है वो भगवान के दास में सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा राधा रानी का है। गोवर्धन को भक्त लोग दो रूप में पूजा करते हैं, एक उनको बोलते हैं गिरधारी और दूसरे बोलते हैं गिरिराज। कुछ भक्त गोवर्धन और कृष्ण में कोई अंतर नहीं करते, गोवर्धन और कृष्ण एक समान है, क्योंकि जैसे आपने सुबह सुना वही गोवर्धन ने कृष्ण का स्वरूप लिया था ना, वही कृष्ण ने गोवर्धन का स्वरूप लिया, एक्सपांड हो गए थे। कितना बड़ा था पता है, इतना आकाश में दूर दूर तक जाते थे, इतना बड़ा स्वरूप था, खाते रहते थे और लाओ अन्योर अन्योर खाते रहते थे। ऐसे गांव आएगा अन्योर। बाद में शांत हुए तुलसी पत्ता के साथ, एक तुलसी पत्ता दिया और भगवान शांत हो गए। तो ये गोवर्धन का एक स्वरूप है स्वयं भगवान के रूप में, जिनकी पूजा करते हैं उनको मोर पंख लगाते हैं, सब लगाते हैं गोवर्धन को, गोवर्धन शिला को उनकी पूजा करते हैं। दूसरे भक्त होते हैं जो गोवर्धन को भगवान का दास वैष्णव के रूप में उनकी पूजा करते हैं। ये दूसरे जो है वो कैसे करते हैं, उनको वैष्णव के रूप में तो उनको मोर पंख नहीं लगाते हैं और उनको हरिदास वधि के रूप में उनकी पूजा करते हैं। और आपको पता है गुंजामाला, यू नो गुंजामाला, जानते हैं गुंजामाला क्या होता है, किसी देखा है सुना है, अभी हम बताएंगे आपको क्या है। लाल कलर की माला होती है, वो नेचुरल होता है, नेचुरल ऐसे मोती जैसे लाल लाल मोती होते हैं, और वो मोती पेड़ पर उगते हैं, वो राधा रानी को बहुत पसंद है, उसको गुंजा माला, लाल कलर का माला होता है, रेड माला। हम आप दिखाएंगे कभी अहमदाबाद में, हम देखा वो राधा रानी को बहुत पसंद है, तो गुंजा माला को गोवर्धन के पास रख देते हैं और कहते हैं राधा कृष्ण का स्वरूप। तो और जो भक्त के रूप में उनकी पूजा करते हैं गोवर्धन गिरिराज जी की, तो क्या करते हैं तुलसी रख देते हैं गोवर्धन के पास, गिरप्पा शिला के पास, और कहते हैं जब आपको टाइम मिले तब ये शिला ये तुलसी पत्र भगवान के चरण में डाल देना। तो ये गिरिराज जी का भगवान के साथ इस तरह से संबंध होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर गोवर्धन को कृष्ण के रूप में माना जाए तो स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान। अगर उनको भक्त के रूप में माना जाए तो राधा रानी कहते हैं कि वो हरिदास में श्रेष्ठ, और हरिदास में श्रेष्ठ केवल एक ही व्यक्ति है, कौन है? राधा रानी। इसका अर्थ यही होता है कि वो और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है, गोवर्धन और राधा रानी। तो इसका ये तात्पर्य होता है कि गोवर्धन राधा कृष्ण से एक रूप से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है, उनकी लीला में सहाय करने के लिए पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है गोवर्धन। यही गोवर्धन भगवान को क्या क्या प्रदान करता है, गोवर्धन क्या देता है भगवान को? कंदरा है ना, गुफा, यहाँ पर भी कुछ गुफा है अभी भी, लेकिन ऊपर चढ़ना मना है, क्योंकि ऊपर चढ़ने से उनका अपराध होता है, इसलिए भक्त लोग उनके दूर रहते हैं, पास नहीं जाते। प्रणाम करने का अर्थ क्या है? दूर से प्रणाम करना, पास में जाकर नहीं करना, दूर से प्रणाम करना चाहिए। तो गोवर्धन के ऊपर पाँव नहीं रखना है, लेकिन ऊपर आपने आपके जिस आश्रम में आप रुके हो ना उसके सामने एक छोटा सा पर्वत के ऊपर देखा है, छोटा सा एक मंदिर है ऊपर पर्वत के ऊपर छोटा सा, वहाँ पर माधवेंद्र पुरी ने वो करवाया था अभिषेक गिरिराज जी का, वहाँ पर श्रीनाथ जी का विग्रह था पहले, ऐसे बोलते हैं। वहाँ से फिर वो मंदिर में से विग्रह को निकाल करके मंडोली ले गए। दिस इज लॉन्ग स्टोरी, वो पता है ना आपको, माधवेंद्र पुरी ने श्रीनाथ जी का स्थापना किया था, वो तो पता है ना, वहाँ पर अभिषेक करते थे उस जगह पर, प्रतिष्ठा का सब वहाँ हुआ था। तो गोवर्धन कंदरा, बहुत सारी कंदरा है, फिर क्या और क्या देते हैं वहाँ पर? बहुत सारे वाटरफॉल्स थे पहले, अभी कम हो गए शायद, नहीं के बराबर, पानी नहीं निकलता था उसमें से, और फ्रूट्स, मीठे फल। और कंदरा में कैसा होता है पता है? यू नो व्हाट इज कंदरा? केव में क्या होता है, गर्मी के सीजन में एसी हो जाता है ठंडा, और ठंडी के सीजन में गर्म, ये विशेष होता है उसका लक्षण। फिर और क्या प्रदान करते गोवर्धन? गैयों के लिए घास। जब बहुत सारे असुर ने आक्रमण किया तो उपनंद, जो नंद महाराज का भाई है उपनंद, उसने उपनंद के नंद को सजेशन दिया कि यहाँ पास में एक बहुत सुंदर पर्वत है गोवर्धन, हम वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर हरी घास है, हमारी गैयों के लिए हो जाएगा। इसलिए वहाँ से सब लोग पैदल चले गए वृंदावन से, कहाँ गए? गोवर्धन इधर आए थे लोग सब, छठीकरा में रुके थे एक रात, छठीकरा सामने की जगह है वृंदावन, वहाँ एक रुके छठीकरा रुके थे, उससे आगे फिर गोवर्धन आए थे, गोवर्धन में कुछ रामें रुके, फिर आगे रुके, फिर आगे रुके, ऐसे तीन चार दिन के बाद पहुँचे थे नंद का। फिर और क्या देते हैं? हाँ, गोवर्धन ने सबको आश्रय दिया था, सबको है ना, सारे ब्रजमंडल को, पता नहीं बड़ा कितना बड़ा कहाँ से हो गया सारा ब्रजमंडल, उसके अंदर करोड़ों भक्त आ गए एक साथ, करोड़ तो केवल गोपियाँ थी, बाकी सब अलग, इतने सारे गोवर्धन ने विस्तार कर दिया इतना बड़ा अपना विशाल। और बताइए और क्या देते गोवर्धन? शेल्टर, आश्रय तो हो गया। फिर भक्ति देते, प्रेम देते, कलर, रेड कलर, वो रेड कलर भगवान उसका पर्वत से गोवर्धन के ऊपर से ऐसे मिट्टी ले लेते थे रेड कलर का, और यहाँ यहाँ लगा देते, ये उनका श्रृंगार था भगवान का, गोवर्धन की मिट्टी से श्रृंगार करते थे कलर से गोवर्धन। तो गोवर्धन के विषय में बहुत सारी कथा है कि वो इस तरह से इतने, सबसे महत्वपूर्ण है कि गोवर्धन आपकी सारी इच्छाएं सारी कामनाएं पूरी करते हैं।
सारी इच्छाएं सारी कामना सब कुछ पूरी कर देता है। गोवर्धन परिक्रमा जब होता है ना, तो परिक्रमा में क्या होता है, जैसे आप गोवर्धन परिक्रमा शुरू करते हैं कोई भक्त, जब परिक्रमा शुरू करते हैं ना, तो सूर्य बहुत सारे लोग आते हैं इधर परिक्रमा करने के लिए बाहर से, तो सूर्य करते हैं तो गोवर्धन स्वयं गोवर्धन भगवान गोवर्धन पर्वत स्वयं दूसरा एक छोटा सा ऐसा स्वरूप लेते हैं जो आप नहीं देख सकते, ऐसा स्वरूप लेकर आपके पीछे पीछे आप भी चलते हैं, वो भी पीछे चलते हैं गोवर्धन वो भी पीछे चलते हैं और आपके मन में क्या चल रहा है वो देखते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है वो देखते हैं कि हे भगवान हे गिरिराज मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, एक बच्चा दे दो। हाय हाय गिरिराज क्या है वो मुझे एक गाड़ी चाहिए, मेरे मित्र के पास इतनी बड़ी गाड़ी है, हाँ मेरे पास छोटी गाड़ी है बड़ी गाड़ी गिरिराज सोचेगा ये क्या मांग रहा है, वहीं से छोड़ के चले जाते, चल भाई तू अपना काम कर तेरी प्रार्थना मैंने लिख ली, प्रार्थना करेंगे तो पूरा तो करेंगे, लेकिन गोवर्धन क्या करते हैं प्राकृत भक्त है ये, बहुत सारे प्राकृत भक्त होते हैं। प्राकृत भक्त का अर्थ क्या होता है कि बहुत सारी भौतिक इच्छाएं होती है, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारी प्राकृत इच्छाएं होती है, भौतिक इच्छाएं इंद्रियां है ना, सुख चाहते हैं पूरा समय भगवान के सामने, आनंद के एकमात्र भोक्ता जो भोक्ता होता है, भोक्ता का अर्थ क्या है जो एंजॉयर, कौन है एक ही एंजॉयर, कौन है कृष्ण एक ही एंजॉयर है, और हम सब उनकी एंजॉय में सहाय करना है, दैट्स इट समझा। तो गोवर्धन इसे पीछे पीछे आता है, वो देखता है तो इसको ये कोई कहता गाड़ी चाहिए कोई कहता ये चाहिए, अरे कोई गाड़ी वाला आएगा उसको कोई प्रार्थना किया और वो उसकी इच्छा पूर्ण हो गई, उनकी इच्छा पूर्ण हो गई, इच्छा पूर्ण हो गई तो क्या करेगा, यहाँ से जाएगा वापस बाहर, बाहर को यार मेरा तो काम हो गया, गिरिराज जी का एक परिक्रमा लगा दिया, एक गाड़ी आ गई मेरे पास, तो उसके 10 लोग आएंगे उसके साथ, हाँ गिरिराज जी का परिक्रमा करने से धन आता है, हाँ तो ये प्राकृत भक्त की तभी क्या हो गया, गोवर्धन के विषय में गोवर्धन सोच रहे थे कि लोग परिक्रमा करने आ रहे हैं, सबके पीछे जाते हैं लेकिन देखते हैं 99% लोग आते हैं किस भाव से, यही प्राकृत भाव, ये चाहिए वो चाहिए चाहिए, कोई ऐसा कहता है कि जो गोवर्धन के पास कोई भौतिक कामना करता है तो उसको वो मिल तो जाता है लेकिन फिर भक्ति नहीं मिलता उसको, लेकिन कोई भक्त जाएगा, कोई भक्त जाता है उसके पीछे गोवर्धन जाएगा, वो भक्त कभी 1% भक्त ऐसा प्रार्थना करते हैं क्या कि हे गिरिराज हे गोवर्धन आप तो हरिदास में सर्वश्रेष्ठ हो, आप तो भगवान के सबसे प्रिय हो, कृपा करके मेरा जो असली स्वरूप है वो प्रकाशित कीजिए, मैं वास्तव में कौन हूँ, राधा और कृष्ण के लिए मेरे हृदय में जो प्रेम नहीं है उसको जागृत कीजिए, मेरा आपके चरण कमल के प्रति राधा कृष्ण के चरण कमल के प्रति मेरा सनातन आकर्षण हुए और मैं नित्य सेवा करता रहूं राधा कृष्ण की, ऐसा कृपा कीजिए, ऐसी भावना लेकर चलने वाले 1% ऐसी भावना जो जो गोवर्धन पहले सुनता है क्या अच्छा ऐसी भावना लेके आ रहे हैं अच्छा मधुकर कलानाथ मदन ये सब ऐसी भावना लेके घूम रहे हो अच्छा तो ऐसे गोवर्धन ऐसे सोचेंगे। फिर गोवर्धन का क्या होता है वो क्या करता है गोवर्धन वो वहाँ से चले जाते कुछ भी बोले बिना। फिर वो देखते हैं कि ये क्या कर रहा है पूरा परिक्रमा कर रहा है किया करने दो दूसरी बार आएगा दूसरी बार आया फिर देखे क्या भाव लेके आया हाँ यही भावना है ठीक है करो करो परिक्रमा दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार वो परिक्रमा करता रहता है उसके आँख में से पानी आ गया आप तो कृपा करो मैं कितना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको आप कृपा करो। तब गोवर्धन सोचता है ठीक है नेक्स्ट टाइम जब परिक्रमा के लिए आता है तब गोवर्धन तुम्हारे पीछे पीछे आएगा अब गोवर्धन क्या करते हैं, पूरे परिक्रमा के दौरान ये भाव है कि एक शुरुआत में होता है ये भाव? तो ये भाव थोड़े थोड़े आगे देखेंगे, पूरे परिक्रमा में माला करते 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो ये भावना आता है। हाँ, फिर क्या करेंगे? हाँ, भाव तो इसका मन तो स्थिर है, एक ही चिंतन कर रहा है बार बार, मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए, मुझे आपकी सेवा चाहिए, निरंतर यही भावना है। फिर गोवर्धन उस पर कृपा करके उसमें डिस्ट्रैक्शन डालते हैं, उसके माइंड को कसौटी कर दे, उसको कष्ट देंगे, उसको परेशान करेंगे, उसको 10 लोग आएंगे अरे प्रभु जी दंडवत प्रणाम, उसको कष्ट देंगे, उसको प्रतिष्ठा देंगे, उसको यू नो भूख लगेगी, कुछ भी उसका डिस्ट्रैक्शन करेंगे, उसके डिस्ट्रैक्शन में भी और निकल गया बाहर, फिर भी वो स्थिर रह गया, तब गिरिराज का ठीक है चलो अब मैं तो मैं अपने आप को प्रकाशित कर सकता हूँ, फिर उस पर कृपा हो सकती है। इस तरह से गोवर्धन हमारी कसौटी करते हैं और हमारी इच्छा पूरी करते हैं। यस, ये निश्चित है कि गोवर्धन आपकी इच्छा अवश्य पूरी करें, ये निश्चित है, क्योंकि वो जैसे कल्पतरु है ना, भगवान का भक्त है, भगवान से ज़्यादा भगवान के भक्त ज़्यादा दयालु होते हैं। बेटा बाप के पास जाएगा 100 रुपये दो, तो बेटा है यार तू जाए मेरे पास कुछ नहीं है 50 रुपये जा, वो तो आपको 100 रुपये की ज़रूरत है। तो बाप के पास जाएगा, माँ के पास गया तो क्या हुआ, माँ के पास जाएगा मम्मी 100 रुपये चाहिए, बेटा अच्छा 100 रुपये चाहिए 110 ले ले जा, तो 100 के बोले 110 मिल जाएगा, है ना। इसलिए जो भक्त हो भगवान के पास जो कृपा नहीं मिलेगा, वो कृपा आपको कहाँ मिलेगा, गिरिराज जी के पास, गोवर्धन के पास, राधाकुंड के पास, राधाकुंड में जो जल है वहीं से वो कृपा मिल जाएगी। इसलिए आप लोग के पुण्य का या कर्म का या आपका जो कृपा प्राप्त हो इसका कोई तुलना नहीं है। मुझे खुद को आश्चर्य हो रहा है कि हम एक अचानक से इस तरह से कैसे राधाकुंड के पास आ गए। इतना पवित्र स्थान है यहाँ पर कि यहाँ तक आना ही बहुत मुश्किल है, यू कैन नॉट रीच हियर, पहुँच ही नहीं सकते राधाकुंड तक, बहुत मुश्किल इधर आना, लेकिन अगर आप आ गए हो तो आप सोचो कितना भाग्य है आप इधर आए, आपको कितना बड़ा कृपा हुआ है, यहाँ पर राधाकुंड आए, तो इसका पूरा फायदा उठाइए, इसका जल अपने सिर पर रखिए और पूरे मन से हृदय में आपके पास जो कुछ भी है खींच खींच के जितना हृदय में है सारा प्रेम इकट्ठा करो और सारा प्रेम से भगवान राधाकुंड के जल को राधाकुंड को प्रार्थना करो कि आप कृपा कीजिए ताकि हमारा हृदय शुद्ध हो, हमारा कृष्ण प्रेम में आगे बढ़े। तो ये भावना से आपको श्याम कुंड और राधाकुंड दोनों को ही प्रणाम करना, पहले राधाकुंड फिर श्याम कुंड फिर राधाकुंड, ऐसा माना जाता है। इस तरह से आपको प्रार्थना करना चाहिए। कल आप गिरिराज परिक्रमा करोगे तो गिरिराज परिक्रमा में ये ध्यान होगी, तो कल आप गिरिराज परिक्रमा में ये ध्यान रखिए क्या आप किस भाव से परिक्रमा करते हो, आप किस भाव से गोवर्धन का परिक्रमा करते हो, ये ध्यान रखिएगा। मन में जो होगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा, आपको करने की आवश्यकता है, अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा, जो मन में होगा ना अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा, तो संभाल के कीजिए जो गोवर्धन। तो आप और परिक्रमा के कुछ नियम है वो मधुकांत्र आपको बताएंगे कल परिक्रमा के समय। परिक्रमा के नियम होते हैं जिसमें आप और भौतिक चर्चा नहीं कर सकते हो परिक्रमा के दौरान, और कुछ ऐसा कुछ नहीं खा सकते जो भगवान को ऑफर नहीं हुआ हो, और चमड़ा वमड़ा वगैरह जो वट एवर द रूल्स आर दैट यू कैन टेल देम वो नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर गोवर्धन में जो निवास कर रहे हैं उनको हमेशा आदर दो, रिस्पेक्ट, उनको रिस्पेक्ट दो। जो यात्री आते हैं दर्शन करने के लिए उनको भी आदर दो, क्योंकि वो सभी पुण्यशाली है, सभी पवित्र आत्मा है, उनको भी आदर लो और सभी वैष्णवों से कृपा मांगो। इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। तो गोवर्धन श्याम कुंड और राधा कुंड में 3 दिन आप यहाँ पर भाग्यशाली हो, यहाँ पर हो, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको अधिक से अधिक फायदा हो, लाभ हो। वी विल अरेंज सम गुड लाइक यू नो वंडरफुल स्पीकर लाइक वी आर ट्राइंग टू गेट कदम कानन महाराज टू स्पीक टू ऑल ऑफ यू आफ्टर 2 डेज। सो कदम कानन महाराज विल गिव लाइक 1 लेक्चर, सो विल ट्राई आवर बेस्ट। ही इज वंडरफुल कीर्तन्या।
कदम काम वहाँ बहुत अच्छा कीर्तन भी करता है, तो उनका कीर्तन भी होगा, उनका कथा भी हो सकता है, विल ट्राई फॉर दैट। सो राधाकुंड श्याम कुंड और गिर गोवर्धन का संक्षेप में मैंने आपको बताया। अभी आपको 5-10 मिनट में कोई प्रश्न है तो बताइए।
हरे कृष्ण। ये प्रश्न ये कि आपने बताया राधा कुंड का चल है वो राधा रानी से डिफरेंट नहीं है, और उसका पानी छिड़कने से कृष्ण प्रेम मिलता है। तभी हम सब भक्तों ने ऐसा कुछ सब डाला तो कुछ हुआ नहीं हमको उसको।
अच्छा,
क्या
गुड क्वेश्चन। इसका महिमा तो अनंत है गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंड का, लेकिन क्या होता है कि यही प्रश्न पूछा था एक बार कहीं पर प्रवचन में, तो क्या कहा गया है कि राधा कुंड श्याम कुंड इतने पवित्र हैं, लेकिन अगर इसका पूरा प्रभाव अगर आप चाहते हो तो कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो क्या है? एक तो सबसे पहले अपराध से मुक्ति। आपके हृदय में अपराध, बहुत सारे वैष्णव का अपराध किया हुआ है, नाम अपराध किए हुए हैं, बहुत सारे अपराध किए हुए, तो इसका परिणाम नहीं मिलेगा पहला। दूसरा, आपको श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा है नहीं, जैसे महिमा बताया, लेकिन इसमें श्रद्धा नहीं हो रही है। अरे ये कैसे संभव है, इतना आसान नहीं। तो दूसरा ये श्रद्धा। तीसरा, आपके हृदय में तीव्र इच्छा होनी चाहिए उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। अगर ये तीनों चीज मिलेगी तब जाके आप पर ये कृपा होगा कृष्ण प्रेम। ये तीनों होना चाहिए, आपकी इच्छा भी होनी चाहिए। आप सोचते हो कि कृष्ण प्रेम से महान भी और कुछ है संसार में, तो फिर कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा? कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का मूल्य क्या है? क्या है मूल्य? लौल्य। ग्रीडीनेस। आप कितने लालची हो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए? कौन चाहते हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करना? अरे बाप रे, सबने हाथ उठा लिए। अच्छा, तो आप राइट सही स्थान पर आए हो। ये कृष्ण प्रेम, और ये ऐसा नहीं कि आप कोई भगवती सिर पे लगा दिया और कृष्ण प्रेम मिल गया, वहाँ भागवत बन गया, ऐसा नहीं होता है। इसका पालन है, विधि भक्ति का पालन करो, 16 माला जप, मंगला आरती, ये जो भी आपका जो रूल्स रेगुलेशन है उसका पालन करो, और उस तरह से जब धीरे 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 वैष्णव की कृपा से, वैष्णव की संगत से हृदय शुद्ध होगा, तब कृष्ण प्रेम का अंकुर फूटेगा। समझे? समझे? तभी ये हो सकता है। सो इसलिए साधन भक्ति और वैष्णव की कृपा, वैष्णव की कृपा के बिना कुछ संभव नहीं। आप यहाँ पर आए ना, उसके पीछे भी वैष्णव की कृपा है, तो वैष्णव की कृपा से हम इधर पहुँचे, तो इसलिए हमेशा वैष्णव की संगति और उनकी कृपा का लाभ उठाइए, तभी आपको कृष्ण प्रेम मिलेगा। और कोई प्रश्न? एनी मोर क्वेश्चन? और कोई?
मुझे प्रश्न है कि हम गिरिराज की कृपा किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं पूरी तरह से? कल परिक्रमा करने जा रहे थे।
भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि गिरिराज का कृपा या धाम का कृपा तब प्राप्त होता है जब आपको वैष्णव की कृपा मिलती है। अगर आपको कोई वैष्णव की कृपा मिल रही है तो समझ लो कि गिरिराज जी का कृपा प्राप्त हो रहा है। या साधु संगत, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करो, या उदय नित्य शुद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का बुला। कृष्ण प्रेम जो है उसका उदय कैसे होता है? श्रवण आदि शुद्ध चित्त। और वैष्णव के मुख से भगवान का गुणगान सुनोगे, उसी तरह से ये कृष्ण प्रेम जागृत होगा। इसलिए अगर आप गोवर्धन का कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो भक्तों के मुख से गोवर्धन का महिमा सुनो, और इस तरह से हृदय भी शुद्ध होगा। और अगर आप आध्यात्मिक प्रगति हुआ, इसका क्या परिणाम है? आपका भौतिक आकर्षण जो है वो कम होना चाहिए और आध्यात्मिक आकर्षण बढ़ना चाहिए, यही उसका मापदंड है। गोवर्धन को अर्चन से, प्रणाम से, पूजन अर्चन से, प्रणाम से, परिक्रमा से,
और गुणगान से इस अलग अलग रूप में सेवा 5 रूप में सेवा की जाती है, वो हम बाद में बताएंगे डिटेल में आपको। और कोई प्रश्न?
आई जस्ट वॉन्ट टू एड वन पॉइंट कि जैसे हरिंद गोविंद प्रभु ने प्रश्न पूछा कि हम कैसे गोवर्धन की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे प्रभु जी ने बताया कि वो गिरिराज महाराज हैं, वो ही इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा एंड इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम राधा रानी ऑल्सो, और हमारा जो इस्कॉन है और जो प्रभुपाद जी का जो मिशन है ये सब चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स के ऊपर है। और जैसे कि हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा और कृष्णा इन द सेम देयर नो डिफरेंस बिटवीन राधा एंड कृष्णा टुगेदर एंड चैतन्य महाप्रभु, तो उस हिसाब से देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गिरिराज जी एंड चैतन्य महाप्रभु बिकॉज बोथ आर हैविंग सिमिलर काइंड ऑफ मूड। चैतन्य महाप्रभु इज पतित पावन, कि वो सब लोगों का उद्धार करते हैं हर समय इरेस्पेक्टिव ऑफ उनकी क्या क्वालिफिकेशन है। उसी प्रकार से गिरिराज जी भी आप देखिए किसी प्रकार के व्यक्ति यहाँ पर आता है, हर समय दिस टेंपल इज ओपन, गिरिराज जी हर समय सब लोगों को दर्शन देते हैं और वो सब लोग का उद्धार करने वाले हैं। तो यदि हम वास्तव में चाहते हैं गिरिराज जी को प्रसन्न करना तो हमारे लिए सबसे सरल उपाय ये है कि हम प्रभुपाद जी के मिशन को सक्सेसफुल बनाएं। यदि हम चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करेंगे तो गिरिराज जी विल बी ऑटोमेटिकली हैप्पी। तो अगर हम संकीर्तन को बढ़ाते हैं तो दैट इज द बेस्ट वे टू प्लीज गिरिराज गोवर्धन।
और कोई एनीबॉडी एल्स? वेल आई डोंट नो वेदर एनीबॉडी इज रेजिंग देयर हैंड, डोंट शो द लाइट। हां अब बताओ। ओके नो प्रॉब्लम। सो वील अभी आप सबको जाने का समय है, वहाँ पर पहुँचना है आपको रूम पर और उसके बाद फिर क्विज वगैरह सब होगा हमारे रात के यहाँ पर बहुलाष्टमी के दिन बहुत बड़ा उत्सव होता है। हम लोग इस बार आए थे यहाँ पर रात को 2 बजे तक इधर ही थे सामने, तो पूरा रात तक ये स्थान ऐसा पवित्र है कि ये 24 घंटे खुला रहता है आपके लिए, कृपा देते रहते हैं। तो गिरिराज गोवर्धन की
जय। महाराज ये पाठ में हम बड़े जाते हो
जय। जो कोई पाठ नहीं बाबा।